है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और आज फिर से अपने प्रियों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज इस पुस्तक का यह अंतिम अध्ययन है। मेरे प्रियो, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर इसराइल से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने इसराइल को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। उन्हें वह मिस्र देश से बाल्यकाल में निकालकर प्रतिज्ञा के देश में लाया था और उन्हें समृद्धि प्रदान की, सुरक्षा प्रदान की, परंतु उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और अन्य मूर्तों की पूजा की। उनके इस व्यवहार से परमेश्वर को दुख हुआ। उन्हें दंड देने के विचार से परमेश्वर का दिल दुखी हो रहा था, परंतु उनके पाप का दंड तो उन्हें मिलना ही था। परंतु परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया और उनके पुनः स्थापन की प्रतिज्ञा की। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 12 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 12 में परमेश्वर इसराइल को दंड देने की ही चर्चा करता है। आइए आप मेरे साथ होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशुर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। लिखा है, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। पुरवाई अरब के रेगिस्तान से होकर इसराइल पर बहती है। परमेश्वर कहता है, मैं अशुरों को पुरवाई के समान लाना चाहता हूं। तब हम आगे पढ़ते हैं होशे 12 अध्याय उसके 2-4 पद में। लिखा है, यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। मेरे प्रियो, लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में यह उल्लेख क्यों किया है, याकूब एसाव की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ था। आज विज्ञान और मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब वह अपनी माता के गर्भ में होता है। उस समय उसका शारीरिक विकास और चरित्र निर्माण होता है। याकूब ने अपनी माता के गर्भ ही में अपनी लालसा प्रकट कर दी थी कि वह पहिलौठा होना चाहता था। उसने पहिलौठा होने के लिए अपनी माता के गर्भ ही से संघर्ष आरंभ कर दिया था। परमेश्वर ने आगे चलकर उससे युद्ध करके उसे अपनी अधीन किया, उसे दीन बनाया कि वह परमेश्वर से आशीष पाए। उसने उस स्वर्गदूत पर विजय कैसे प्राप्त की? क्या वह एक महान योद्धा था? जी नहीं, वह तो योद्धा ही नहीं था, वह तो चित हो गया था। तो फिर वह जीता कैसे? समर्पण करके। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर से कितना भी युद्ध कर लें, परंतु जीतने के लिए आपको आत्मसमर्पण करना ही होगा। होशे नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। ध्यान दीजिए, लिखा है यहोवा। यहोवा नाम परमेश्वर ने अपनी याद के लिए इसराइल को दिया था। उसने कहा, तुम मुझे सदा यहोवा अर्थात स्व अस्तित्व के नाम से जानोगे, जीवित परमेश्वर। अतः हमें परमेश्वर की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। जी हां, उसका नाम ही उसके स्वभाव का प्रतीक है। होशे की पुस्तक 12 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रह। उन्हें आवश्यकता इस बात की थी कि वे जो कहते थे उसे व्यवहार रूप में दिखाएं। आज शैतान की उपासना और समलैंगिक संबंध सबसे बड़े अपराध हैं। परमेश्वर के पास आकर उसकी बाट जोहने के द्वारा ही हमें न्याय और दया मिलेगी। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। होशे 12 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। यह व्यापार में धोखाधड़ी के विषय हैं। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु ध्यान दे कि परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। होशे 12 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, एप्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। एप्रेम सोचता था कि वह पैसों से कुछ भी करवा सकता है। उसका धनोपार्जन धोखे से था, परंतु उसके विचार में वह परमेश्वर की आशीष थी। होशे 12 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ, मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। परमेश्वर इसराइल से कहता है, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। और तब हम पढ़ते हैं होशे 12 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे पूरे छली हो गए हैं, गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियां उन ढेरों के समान हैं जो खेत के रेघारियों के पास हों। लिखा है, क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? गिलाद में रोग हरण का बलसान होना था, परंतु उस समय वह स्थान पाप का केंद्र था। होशे 12 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा हुआ है, एप्रेम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्ठा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। उसका किया हुआ खून उसी पर बना रहेगा। जी हां, वह दोषी है और मृत्यु दंड के योग्य है। वहां बहुत खून बहाया गया था और उसका पाप उसी के सिर पर रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से विमुख होने का दंड इसराइल अवश्य पाएगा। यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 और 14 से जारी रखेंगे। अध्याय 13 का विषय है वर्तमान में इसराइल को दंड, भविष्य में उद्धार। देखें वर्तमान में इसराइल को दंड। अध्याय 13 में हम देखेंगे कि इसराइल का दंड अवश्यम भावी है। होशे 13 अध्याय के एक पद में लिखा है, जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इसराइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। दूसरे शब्दों में, जब तक एप्रेम जीवित परमेश्वर की सेवा में था तब तक परमेश्वर ने उसे महिमान्वित किया, परंतु जिस दिन उसने बाल देवता की उपासना की वह मर गया। वह मरा और देश से हटाया गया, परंतु उसके साथ देश भी मर गया। वह आज तक स्वदेश नहीं लौटा है। वह स्थान, उसके नगर आज संसार के सबसे अधिक उजाड़ स्थान है। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेघ करे वे बछड़ों को चूमे। पूजा में वे उन बछड़ों को चूमते थे जिन्हें वे बनाते थे। आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि किसी वस्तु या स्थान को चूमने से परमेश्वर की स्तुति होती है। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि जब वे इसराइल भ्रमण के लिए गए हुए थे तो उस भ्रमण दल में एक स्त्री थी जो वाटिका में प्रभु यीशु की कब्र की भूमि को घुटने टेक कर चूमने लगी। तब उसने उसे पकड़कर उठाया और कहा कि हमें वहां का पानी भी पीना मना है, और वह धरती को चूम रही थी। उसने कहा, यह तो पवित्र स्थान है। तब उसने उससे कहा, परंतु प्रभु यीशु कब्र में नहीं है, वह तो परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। आप उसे चूम नहीं सकती, परंतु उसकी आराधना कर सकती हैं, उसकी स्तुति कर सकती हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना में किसी वस्तु को चूमना मूर्खता है। आपका जीवन उसकी आराधना है। आपकी जीविका, आपका सामाजिक जीवन, आपके परिवार का प्रबंध, सड़कों पर आपका चलना आदि सब उसकी आराधना है। आराधनालय में आपका व्यवहार उसकी आराधना नहीं है। आराधनालय और सड़क में हम अंतर करते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं करता। हर समय हम उसकी आराधना करें। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मेरे मित्रों, आप उद्धार की या मुक्ति की खोज कर सकते हैं, परंतु उद्धार करता एकमात्र वही है। अतः उचित होगा कि आप उसके अनुसार ही चलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आ सकता है। असंख्य मनुष्य इस मार्ग पर आए और इसे सत्य पाया। आपके पास आपके उद्धार का मार्ग हो सकता है, परंतु परमेश्वर ही उद्धार करता है और वही आपको उद्धार की योजना सुझा सकता है, दिखा सकता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप उद्धार की तलाश में हैं, तो प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वही मार्ग सत्य और जीवन है। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इसराइली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र से निकाल कर लाया, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा परंतु तुझे दंड दूंगा। होशे 13 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा, मैं बच्चे छीनी हुई रिचनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। यहां एक अति रोचक भविष्यवाणी है। दानियल अध्याय 7 में बेबीलोन को शेर, यूनान सिकंदर के समय को चीता और मादी फारसी राज्य को रिक्ष दर्शाया है। यहां परमेश्वर कहता है कि वह उनके विरुद्ध सिंह और चीते के समान उठेगा, परंतु निकट भविष्य में वह रिचनी के समान उन पर झपटेगा। इस समय मादी फारसी राज्य अशुरों के अधीन था। बच्चा छीनी हुई रिचनी से अधिक खूंखार कोई प्राणी नहीं हो सकता है। यह पार्श्विक अशुर सेना का एक अति उत्तम उदाहरण है। हम होशे 13:9 पद में पढ़ते हैं, हे इसराइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर को दोष दें तब हमें इस पद को पढ़ना चाहिए, इसराइल ने पाप करके विनाश मोल लिया था। जी हाँ, वह अपनी दुर्दशा का उत्तरदायी था, परंतु परमेश्वर उनका सहायक हो सकता था। होशे 13 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। लिखा है, मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए। इसराइल ने राजा मांगा तो परमेश्वर ने शाऊल को उसका राजा बनाया, फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। उसने उत्तरी राज्य के अंतिम राजा होशियाह को हटा दिया था, उसने यहूदा से सिदकिया को भी हटाया था। यह उसका क्रोध का न्याय था और कारण भी था। आरंभ और अंत में यह उसका ही न्याय था। मेरे प्रियो, हम होशे 13 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। सामरिया दोषी ठहरेगा। मेरे मित्रों, जब आप सामरिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह पूर्ण रूप से उजाड़ है। जी हाँ, भविष्य में इसराइल का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी के साथ अध्याय 13 भी समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 14 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 14 एक उत्तम अध्याय है, वह इसराइल के भावी उद्धार की चर्चा करता है। तो आइए हम पढ़ें, होशे 14 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, हे इसराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। परमेश्वर उनसे कहता है कि वह उनके पाप के कारण उन्हें बंधुआई में भेजेगा। और तब हम पढ़ते हैं होशे 14:3 पद में, अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मेरे प्रियो, कल्पना करें कि आपने अपने हाथों से कुछ बनाया और उसकी उपासना करने लगे। मनुष्य आज अपनी योग्यता को ही पूजता है, वे अपनी बुद्धि की पूजा करते हैं, वे अपने काम की पूजा करते हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर रहित अज्ञानी बन जाते हैं। होशे 14 अध्याय उसके 4-7 पद में लिखा हुआ है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इसराइल के लिए ओस के समान हूंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कृति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, वे मुझसे दूर जा रहे हैं, वे भटक गए हैं, परंतु मैं उन्हें चंगा करूंगा। मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। यह परमेश्वर का स्वभाव है। होशे 14 अध्याय उसके 8-9 पद में लिखा है, एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पद 8 बाइबल के अनुपम पदों में से एक है। यह जयगान है, एप्रेम कहेगा, यह भविष्य में होगा। जी हाँ, परमेश्वर अंत में जीत जाएगा, प्रेम की विजय होगी। परमेश्वर एप्रेम से कहता है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे त्याग दूं? परमेश्वर ने पहले एप्रेम से कहा था कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वह मूर्ति पूजा में लग गया है। अब परमेश्वर कहता है कि एक दिन एप्रेम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, और वह मेरी ओर फिरेगा। मेरे मित्रों, मैं विश्वास किए बिना नहीं रह सकता कि पाप की इस त्रासदी, इस मानव जीवन के सांसारिक नाटक के मध्य अंत में परमेश्वर ही जयवंत होगा। मेरा मानना है कि खोए हुओं से अधिक उद्धार पाने वाले होंगे। स्पर्जन भी यही मानता था। प्रभु यीशु ने एक झुंड कलीसिया के बारे में कहा है कि वह उसे संसार से बुला रहा है, परंतु उसने पहले ही अनेकों को उद्धार दिलाया है। एक बार उसने नीनवे की पूरी जनता को बचा लिया था, 100 वर्ष बाद वे फिर पाप करने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। अनेक अन्य आत्मिक जागृतियां भी आई थी, परंतु परमेश्वर की ओर फिरने का सबसे बड़ा अभियान भविष्य की घटना है। महाक्लेश के युग में ऐसा होगा। प्रसंगवश प्रभु राज भी उद्धार पाने का समय पाने का और उद्धार में शामिल होने का समय होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की विजय होगी, प्रेम की जय होगी। हमारा परमेश्वर अपने रथ में सवार जय की ओर बढ़ रहा है। वह परम प्रधान है, उसके रथ के पहियों में दबने वालों पर परमेश्वर दया करे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं प्रभु के साथ जाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ जीवन गाड़ी जोड़े हुए हूँ, और यही कारण है कि हमें उसके वचन का ज्ञान होना है कि इस कठिन समय में उसकी इच्छा में रहना सीखें। मेरे मित्रों, हमने होशे की पुस्तक में देखा है कि परमेश्वर इसराइल से कितना प्रेम करता था। वह उन्हें मिस्र के दासत्व से मुक्त कराकर लाया और अब्राहम को जिस देश की प्रतिज्ञा दी थी वहां उन्हें बसाया। उसने उन्हें समय पर वर्षा दी, शत्रुओं से उनकी रक्षा की, उन्हें समृद्धि प्रदान की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाया। उन पर जब भी कोई कष्ट आया उसने उन्हें मुक्ति दिलाई, उन्हें समय पर फसल दी और उनके वंश को प्रतिज्ञा के अनुसार बढ़ाया। इन सब उपकारों के उपरांत भी इसराइल ने परमेश्वर का मान नहीं रखा। वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के सदृश मूर्ति पूजा में लग गया और पर्वतों पर वृक्ष कुंजों में छुपकर धूप जलाने लगा। आहाब के राज्य काल में तो हजारों बाल पुजारी अर्थात बाल देवता के पुजारी वहां पल रहे थे। अंत में रुष्ट होकर परमेश्वर ने उन्हें दंड देने की ठान ली, परंतु प्रतिज्ञा भी की कि वह उन्हें तीतर बीतर करने के बाद पुनः स्वदेश में स्थापित करेगा। मेरे प्रियो, यह प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई है जबकि इसराइल राष्ट्र अस्तित्व में आ गया है। यह भावी प्रतिज्ञा है और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। परंतु आपके लिए क्या है? क्या आज आप भी उस पापमय जीवन में जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर की निकटता में अपना जीवन जी रहे हैं? मेरे प्रियो, आज निर्णय लेने की आवश्यकता है, होशे की पुस्तक से सीखने की आवश्यकता है ताकि आज हमारा जीवन आशीषमय हो जाए। मेरे प्रियो, यहां पर होशे नबी की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक के साथ अध्ययन को आरंभ करेंगे। कृपया आप अवश्य उसमें शामिल हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
पल ही तो पल का किसने है जाना होगा क्या कल का।
घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, यीशु बहार लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह।